ओम शांति। प्यारे बाप दादा के इस बेहद घर शांतिवन में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर निरंजना बहन उपस्थित है। हम सब एक हाथ की ताली से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर निरंजना बहन डबल डॉक्टर हैं और 45 वर्षों से प्यारे बाप दादा की सेवा में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। बड़ौदा अलकापुरी से कनेक्टेड काफी सारे सेवा केंद्रों का आप सुचारू संचालन कर रही हैं और मेडिकल विंग गुजरात चैप्टर की आप कोऑर्डिनेटर भी हैं और देश विदेश में आपकी सेवाओं की खुशबू अनेक स्थानों पर फैली हुई है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज हम सबकी ज्ञान रत्नों से झोली भरेंगी आदरणीय डॉक्टर निरंजना बहन।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी जी हमेशा तीन बार ओम शांति इसलिए बुलाते हैं, दादी जी तो बहुत अर्थ उसके बताते हैं, पर मैं ये भी समझती हूँ कि एक बार ओम शांति से थोड़े लोग जागते हैं, फिर दूसरे ओम शांति से और ज्यादा लोग, और तीसरे ओम शांति से सभी ओम शांति का रिस्पॉन्स करते हैं। तो कृति बहन ने तो आप सबका वेलकम किया, सच में ही हम सभी बहुत बहुत लकी है। हम किसके घर में आए हैं? अपने घर में और बाबा के घर में। बाबा का घर सो हमारा घर। तो यहाँ आने वाली हर आत्माएं बहुत 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 भाग्यशाली है जो ये पावन भूमि पर भगवान की मेहमान बन करके आती है ना? कितनी बड़ी बात है। भक्ति मार्ग में कभी किसी ने ये स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा। आज भी आप सभी का अनुभव होगा कि बाहर में अगर आप किसी को कहो कि हमें भगवान मिला है तो बड़ा आश्चर्य लगेगा। और न केवल भगवान मिला है, परंतु क्या है, भक्ति में तो बहुत भक्ति करने के बाद भी भगवान मिला ऐसा जो कहते हैं उनको केवल भगवान का साक्षात्कार होता है। और हमें भगवान मिला तो ऐसे मिला हाँ, जो रोज हमें क्या करता है, पढ़ाता है, रोज हमारे से बात करता है, रोज हमारे हमें पढ़ाता है। या आप किसी को भी कहो तो आश्चर्य लगेगा, परंतु प्रैक्टिकल में आप हम सभी ये अनुभव कर रहे हैं कि समय जो है संगम का, ये जो समय है जिसको विश्व नाटक का ऐसा संगम का समय है जो अंतिम दृश्य और प्रथम दृश्य दोनों का मिलन है। विश्व नाटक का एक तरफ तो अंतिम दृश्य चल रहा है, कलयुग है ना, अंतिम दृश्य है, समय परिवर्तन होने वाला है और अभी नया युग आने वाला है। कौन सा युग कौन सा युग आएगा? सत्य युग है ना, सत्य युग आएगा। झूठ का युग खत्म हो जाएगा और सत्य का युग आएगा। कौन स्थापन करता है? बाबा स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? हम बच्चों के द्वारा। सतयुग या स्वर्ग कोई आकाश में नहीं है और ना पाताल में नहीं है, है ना? यही धरा पर सत्य युग आने वाला है। आपने सुना होगा पिछले 3-4 मुरली के अंदर विशेष बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में सुख अपरंपार है। सतयुग में अपरंपार सुख है, हर प्रकार का सुख है। तन का सुख है ना, एवर हेल्दी बनेंगे वहां पर। कभी किसी को कोई बीमारी होंगी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई बीमारी नहीं। धन अपरंपार, अकिचार धन होगा। धन के लिए कभी किसी को सोचना नहीं पड़ेगा। मन सदा खुश रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, उमंग में, उल्लास में, खुशी में, आनंद में हमेशा। संबंध, हर संबंध कैसे होंगे? सुखदायी, हर संबंध सुखदायी होगा। माँ बाप, बहन भाई, जो काम करने वाले होंगे, आप जहां भी बाहर जाएंगे, जिसके भी साथ काम करेंगे, संबंध भी सुखदायी होंगे। प्रकृति भी सुख देंगी, है ना? कभी कांटा नहीं चुभेगा, समझा? चुभेगा नहीं, एक कंकर भी नहीं लगेगा। सोचिए, कंकर लग जावे पांव में और दुख की फीलिंग आ जावे, ऐसा भी नहीं होगा। कभी धूप नहीं लगेगी, कभी ठंड नहीं लगेगी, प्रकृति से भी संपूर्ण सुख मिलेगा। आप सोचिए, ऐसा युग आने वाला है, ऐसा युग आने वाला है। और कैसे आएगा? किसी भी व्यक्ति को कुछ भी मिलता है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षण कुछ भी मिलता है, उसका आधार क्या होता है? कैसे मिलता है? भाग्य से। कैसे मिलता है? भाग्य से। कुछ भी मिलता है, भाग्य से मिलता है। तो हमें सतयुग का सुख भी कैसे मिलेगा? भाग्य से मिलेगा, है ना? भाग्य से मिलेगा। जो जितना भाग्य बनाएगा उतना उसको सुख मिलता है। सुख का तो युग आ रहा है, सबको सुख मिलने वाला है, परंतु भाग्य अनुसार। इसलिए बाबा आकर के केवल सतयुग की रचना नहीं करते हैं। आज सतयुग की रचना केवल भौतिक रूप से कहा जाए, है ना, तो आज कई स्थान ऐसे हैं विश्व के अंदर जिसको हुबहू स्वर्ग कहा जाए। धन को अगर कोई समझे कि वो स्वर्ग में, धन बहुत है तो स्वर्ग है, तो धन कईयों के पास अरबों रुपया है, कई देशों में खूब धन है, पर उसको कहा जाएगा कि सतयुग है? नहीं कहा जाएगा। तो बाबा केवल भौतिक रूप से स्वर्ग नहीं बनाते हैं, बाबा हमारा क्या बनाने आए हैं? भाग्य बनाने आए हैं। भगवान स्वयं सृष्टि पर आए हैं, युग परिवर्तन करने के लिए आए हैं। कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, परंतु इसका मूल आधार जो है वो बाबा हम सभी आत्माओं का भाग्य बनाने आए हैं। बाबा हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं, समझा? अभी भले हमारे पास एक कौड़ी भी ना हो, फूटी कौड़ी भी नहीं है, पर हमारा भाग्य कैसा बन रहा है? पद्मा पदम भाग्यशाली। आप यहां आए हैं, आप जहां रहे हैं, जिस हॉल में आप बैठे हैं, आप सोचिए ऐसा हॉल कहां देखा? नहीं होता, ये सब भाग्य से होता है। यहां ही हमें अनुभव हो रहा है कि बाबा अभी से ही हमारा भाग्य ऊंचा बना रहे, और ऐसा भाग्य बना रहे हैं अभी, जो बाबा हमें कहते हैं रोज मुरली के अंदर,
कि मैं तुम्हारा 21 जन्मों का भाग्य एक साथ बनाता हूँ। अभी 21 जन्मों का भाग्य एक साथ बनाता है। आप सोचिए कि एक जन्म का भाग्य बनाने के लिए आज कोई व्यक्ति को अपना अच्छा तकदीर बनाना है तो सोचते हैं कि अच्छा पढ़ा लिखा जाए, अच्छी तरह पढ़ा लिखा जाए। लोग रात दिन मेहनत करते हैं खूब कमाने के लिए कि भाई जीवन में सुख मिले, तो भी एक जन्म का सुख उनको मिल नहीं सकता। आप सोचिए बाबा हमारा 21 जन्मों का भाग्य बनाने आए हैं, ये केवल जादू की बात नहीं है। बाबा कहते मैं जादुई लकड़ी नहीं घुमाता हूँ, क्या करता है, ऑफिशियल पढ़ाता है, पढ़ाता है। जैसे लौकिक दुनिया में भी पढ़ाई के आधार पर किसी को नौकरी मिलती है ना, जितना जैसा पढ़ेगा ऐसा ही उनको पोस्ट पोजीशन, उनको पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, उस अनुसार मिलता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी बाबा हमें पढ़ाने के लिए आए हैं। पढ़ाई कौन सी है, रूहानी पढ़ाई है। ये पढ़ाई कौन सी है, आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। बाबा आत्माओं को पढ़ाते हैं। और पढ़ाई कौन सी है, क्या पढ़ाते हैं, एक ही मूल पढ़ाई है हमारी, जो बाबा हमें कहते हैं मैं तुम आत्माओं को पतित से पावन बनाने आया हूं। पावन अर्थात शुद्ध, सात्विक, निर्विकारी, है ना। पावन अर्थात क्या, निर्विकारी, पवित्र। पवित्र जीवन जीना सिखाते हैं, खाली पवित्र नहीं बनाते हैं परंतु क्या करते हैं, पवित्र जीवन जीना सिखाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं रोज। क्यों, इतने सालों से, 77 साल हुए, भगवान स्वयं पढ़ाने वाला रोज पढ़ाता है तो भी हम कितना पढ़े हैं, हमें अपने आप को चेक करना है। जैसे बच्चों के एग्जाम होती है, एग्जाम नजदीक आती है तो जो सिंसियर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, देखते हैं ओवरऑल जो कोर्स होता है, देखते हैं कि भी कितना पढ़ लिया और कितना बाकी है जो हम कवर करेंगे, है ना। तो अभी समय नजदीक आ गया है और ऐसे समय के अंदर हमें अभी अपने आप को चेक करना है। कोई भले कभी कुछ थोड़े समय से ही आए हो, अपने आप को नए समझता हो, कोई पुराने हैं, कोई मैं भी समझते हो कि हम इतना अनुभवी नहीं है और कोई अनुभवी है, पर तो भी बाबा के सभी एक साथ, कोई किसी उम्र का है, कोई किसी उम्र का है, सबके लिए बाबा के सभी मान प्रस्थी है, सभी के लिए एग्जाम का समय नजदीक आया हुआ है। इसलिए हमें अपने आप को चेक कर लेना है, हमें अपने आप को देखना है। कि हमें स्वयं भगवान मिला है, भाग्य लुटाने आया है, तो क्या मैंने उतना भाग्य बनाया है, वो पहले हमें अपने आप को देखना है। अभी हमारे हाथ में है। जैसे बाबा कई बार मुरली के अंदर कहते हैं कि अभी जो करना है सो कर लो पुरुषार्थ, बाद में फिर नहीं तो पछताना पड़ेगा। और अंतिम समय अगर हमें हुआ कि हमने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो कोई रास्ता होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ जो करना है वो अभी ही समय है, जो हम पुरुषार्थ करें पर पुरुषार्थ का जो आधार है वो सबसे पहला आधार है निश्चय। जितना जिसको निश्चय होगा उतना ही वो उस राह पर चल सकता है। सबसे पहला निश्चय ये है बाबा, जो हमें इस साल की मूली में भी कुछ कुछ इशारा विशेष दिया है, जो आज के समय का दुनियावी रीति से आज के समय की जो बिलीफ सिस्टम है, जो उनकी मान्यता है, उससे बाबा ने हमें एकदम भिन्न राह बताया है। और वो ये है कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। एक ऐसा सिद्धांत है जो दुनिया में कोई मान नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। आज जो भी अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, वो समझते हैं कि शायद खूब धन कमाने से सुख मिलेगा, या जो राज्य करने वाले हैं कलयुग की दुनिया में, वो समझते हैं हम दुनिया में सबको सुख देंगे, हम रास्ता अच्छा बना दे, लाइटें सभी गांव में कर दे, बड़े बड़े कारखाने खोल दे, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दे, सबको फ्री दवाइयां दे दे, तो शायद सुख मिल जाएगा। परंतु मिलेगा? सोचिए, मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। जितना जितना हम प्रोग्रेस करते जा रहे दुनिया में, लोग जो समझते प्रोग्रेस, परंतु कोई प्रोग्रेस नहीं। दुनियावी रीति से प्रोग्रेस समझते हैं, आज व्यक्ति अपनी अपने लाइफ के अंदर अगर कुछ बनना चाहता है तो समझेगा मैं डॉक्टर बनूं, अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनूं, अच्छे से अच्छा वकील बनूं। पर वो अच्छे से अच्छा कहा जाएगा? बाबा तो हमें क्या कहते हैं? बाबा तो हमें ये कहते हैं कि भाई बहुत बड़ी हॉस्पिटल खोलने से, बहुत स्पेशलिस्ट बनने से क्या फायदा? बाबा तो कहते बीमारी ना पड़े, ऐसा रास्ता ढूंढो, है ना, बीमारी ना पड़े। कोई व्यक्ति झूठ बोले ही नहीं जो वकीलात करने की जरूरत पड़े। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भाई सुख का आधार कोई भौतिक सुख सुविधा नहीं है, संपत्ति नहीं है, सुख का आधार केवल पवित्रता है। ये निश्चय हमें है, ये हमें अपने आप से पूछना है। हम कई कई रीत अपनाते हैं सुख पाने के लिए, और सच में हर व्यक्ति की व्यक्तिगत पवित्रता, प्योरिटी, हर व्यक्ति की व्यक्तिगत इस विश्व ड्रामा के अंदर, इस विश्व नाटक के अंदर आप हम सभी कौन है? हम सभी कौन है? एक्टर है, और व्यक्तिगत रूप से सभी एक्टर है। समझा? एक्टर तो है, पर कोई एक्टर दो साथ साथ नहीं है, है? सोचिए आप, कोई ग्रुप है? नहीं। हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा व्यक्तिगत रूप से एक्टर है। उनका जो भी हिसाब किताब चलता है वो कैसा चलता है? व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। इसीलिए दो दिन पहले बाबा ने, शायद कल परसों की मूली में बाबा ने कहा था कि मैं यहाँ बहुत सिखाता हूँ कि हे आत्माएं, तुम ऐसी ऐसी चिंतन करो, ऐसी ऐसी बातें बाबा से करो कि बाबा आप हमें बहुत समय के बाद मिले हो, अभी हमें निश्चय हो गया है कि मैं आत्मा हूँ, मैंने ही 84 जन्मों का पाठ बजाया है ना, अभी मेरा अंतिम जन्म है, और अंतिम जन्म में बाबा आप मुझे मिले हो, ये मेरा ब्राह्मण जन्म है, और फिर मैं देवता बनने वाला हूँ, ये नशा चढ़ाता है बाबा। फिर बाबा ने क्या कहा मुरली में? परंतु जैसे क्लास से बाहर निकलते हैं क्या होता है, जैसे क्लास से बाहर निकलते हैं अपने मित्र संबंधियों को देखते हैं तो क्या हो जाता है, नशा गायब। अच्छा, कौन सा नशा गायब होता है? आत्मभाव का। फिर हम वही महसूसता में आ जाते हैं, वही फीलिंग में आ जाते हैं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये तेरा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, यही भाव में आ जाते हैं और वही प्रकार के कार्य में लग जाते हैं। और इसलिए बाबा 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 हम कहते हैं, परंतु फिर भी जो बाबा कहते हैं कि मुझे आप खुद को अगर आत्मा समझेंगे, खुद आत्मा भाव में रहेंगे तो बाबा हमें यथार्थ रूप से याद आएगा। तो हमारा जो इस जीवन का विस्तार है वो विस्तार का कारण ही क्या है, देह भाव। देह भाव ने ही हमारा पारिवारिक जो विस्तार है वो बहुत बड़ा दिया है। इसीलिए जो पहला निश्चय है बाबा जो हमें रोज रोज मूली में समझाते हैं, हमारा पहला लेसन जो है वो पहला निश्चय क्या है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, पहला निश्चय है ना, समझा है कि मैं आत्मा हूं। हम कौन है, आत्मा है। मैं आत्मा कहां हूं, भ्रुकुटि के बीच में महसूस होता है, भ्रुकुटि के बीच में सोचिए, मैं अति सूक्ष्म बिंदु आत्मा हूं और भ्रुकुटि के बीच में विराजमान हूं, ऐसा महसूस होता है। ऑनेस्टली अपने आप से पूछिए, प्रामाणिकता से अपने आप से पूछिए कि क्या मैं अपने आप को आत्मा समझ सकती हूं या समझ सकता हूं या फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर समझा कि मैं आत्मा हूं, अगर समझा, ज्ञान ऐसी चीज है कि अगर वो अंदर में बुद्धि में जाता है, जाके अंदर अगर बैठ गया ज्ञान बुद्धि में, तो हमारा कर्म और व्यवहार ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर मैंने समझा कि मैं आत्मा हूं, अगर मैंने समझा कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का जो मूल धर्म है, मूल गुण, सबसे पहली बात आत्मा की क्या है, आत्मा अविनाशी है। सबसे पहली बात अगर मैंने समझा कि मैं आत्मा हूं तो कोई डर भय रहेगा नहीं। अगर डर और भय मुझे है, इसका अर्थ क्या हुआ कि मैंने अपने को आत्मा समझा नहीं है, है ना। ये हमें अपने आप को चेक करना है कि बाबा ने हमें पढ़ाया है, रोज पढ़ाते हैं, पर हमने पढ़ा है। एक बार एक स्कूल में, लौकिक स्कूल क्लास में, एक बहुत अच्छा जोक जैसा हो गया कि टीचर ने सभी विद्यार्थियों से पूछा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो एक विद्यार्थी ने उठ के जवाब दिया कि गुरुजी, आप जो भी सिखाते हैं वो सत्य है, पर अगर आपने ये समझा कि हमने समझ लिया तो वो असत्य है। समझा, समझाते तो रोज है बाबा हमें, पर हमने समझा कितना वो चेक करने का समय अभी आ गया है। अभी वो चेक करने का समय आ गया है। जैसे बाबा हमें मुरली में कहते हैं, हमेशा रोज कहते हैं कि अगर आप चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, है ना। स्वयं को आत्मा समझ के बाबा को याद करने का और तुरंत बाबा सृष्टि चक्र को याद करने को कहते हैं। बाबा ने हमें खुद बैठ के पांच स्वरूपों का अभ्यास करना सिखाया। हम सीख गए। अगर सीखे हैं तो, बाबा ने जैसे हमें कहा है कि भाई मुझ आत्मा में ही, मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ और मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है और अभी मुझ आत्मा का अंतिम जन्म है। अगर इस बात को हमने समझा है, चिंतन किया है ना। बाकी बाबा रोज मुरली में कहते हैं और हम सुन लेते हैं, बस एक बार सुना, मैं भी रट भी लिया। कोई पूछेगा कि आत्मा में कितने जन्म, 84 जन्म। सब ज्ञान तो है, मैक्सिमम 84, मिनिमम 1, सब ज्ञान है ना। परंतु मैंने अगर ये समझा है तो आप सोचिए, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने 84 जन्म लिए हैं, मैंने ही लिए हैं, अगर ऐसा महसूस हुआ तो 84 जन्मों के माँ बाप भी किसके माँ बाप होंगे, मेरे। जो भी हमारे संबंधी होंगे 84 जन्मों के, वो किसके होंगे, मेरे। तो उन सबके साथ अगर आप मेरापन जुटाओ तो इस जन्म का मेरापन खत्म हो जाएगा, है ना। 84 परिवार के साथ आपका संबंध है, वो याद रहेगा तो आत्मभाव ऑटोमेटिकली आएगा। ना किसी के मिलने का सुख होगा, सुख का प्रभाव होगा, और ना किसी के साथ बिछड़ने का दुख होगा। बाबा, साकार बाबा जब लेटर लिखते थे तो लास्ट में ये लाइन लिखते थे, न विसरो न याद रहो। क्या लिखते थे, न विसरो न याद रहो। बाबा किसी को भूलता भी नहीं है और बाबा किसी को याद भी नहीं करते। तो ये मन की स्थिति बनेगी अगर हमने समझा है तो कि मैंने आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, तो ये भाव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आत्मभाव अगर आएगा तो जैसे बाबा हमें समझाते हैं कि हर आत्मा जब ये समझ लेती है, ये बहुत बड़ी ज्ञान जिसको कहते हैं, बाबा हमें भक्ति और ज्ञान का अंतर बताते हुए जो कहते हैं, ज्ञान जिसको कहते हैं वो ये है कि ये समझना कि हर आत्मा को अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही प्रारब्ध प्राप्त होती है और प्रारब्ध के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। हर एक को अपने पुरुषार्थ से, हर एक आत्मा को व्यक्तिगत रूप से, कोई किसी का भाग्य ले नहीं सकता, कोई किसी को भाग्य दे नहीं सकता, है ना। कभी कोई समझो मुझे किसी के पर बहुत गुस्सा आ गया और मैं कहूं कि चलो मेरे पाप सब तेरे को दे देती हूं, जाओ, दे सकती हूं, कोई नहीं दे सकता है। कोई कहे मेरा पुण्य ले ले, तेरा है बस, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। हर एक आत्मा को अपने कर्म अनुसार ही फल मिलता है। जो स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आए हैं पर तो भी यही बात सिखाते हैं कि जो तुम करोगे हाँ वही तुम पाओगे, जितना करोगे उतना ही पाओगे। है भगवान स्वयं, पर तो भी बाबा कहते आपको कैसा मिलेगा, नियम अनुसार ही मिलेगा। अगर ये जिसकी बुद्धि में बैठ गया, इस बात का अगर हमने चिंतन किया, ये बात अगर हमारी बुद्धि में बैठ गई, तो हमारा मन कभी भी किसी के ऊपर नाराज नहीं होगा, कभी हमारे मन में ये भाव नहीं आएगा कि इसने मेरा बिगाड़ दिया। कोई किसी का बिगाड़ सकता है? बिगाड़ सकता है? कोई नहीं बिगाड़ सकता। कोई किसी का सुख ले सकता है, छीन ले सकता है, किसी मेरा सुख ही छीन लिया है? नहीं, कोई किसी का सुख छीन नहीं सकता, कोई किसी को दुख दे नहीं सकता। तो मुझे भी कोई दुख नहीं दे सकता और कोई सुख नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? हम स्वयं। इसलिए बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि स्व की सेवा करो। स्व की सेवा इसलिए करनी है और वो करनी है कि हम अपने अपने आप को समझाएं। बाबा तो हमें रोज समझाते हैं, परंतु नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम अपने आप को समझाएं। किसी ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि बाबा जब हमें सुनाते हैं तो ये ऐसे हैं जैसे कि होलसेल व्यापारी हमको होलसेल में सब कुछ दे देता है। आप बाजार से आटा तो खरीद करके ला सकते हो, पर खुद खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर जाके रोटी बनानी पड़ेगी, है ना? तो यहां भी आपको आटा मिल जाता है, रोटी किसको बनानी पड़ेगी? जो खाने लायक बन सकता है, है ना? तो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, पर ज्ञान को चिंतन करके, ज्ञान को चिंतन करके अपने लिए ज्ञान को मन में लाना, जिसको बाबा धारणा कहते हैं, ज्ञान की धारणा। बाकी सब धारणा तो हमारी निमित्त हमें बताई हुई है, ब्राह्मण जीवन की धारणा वो अलग है, परंतु ज्ञान की धारणा अर्थात बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं वो हमारे मन के अंदर बैठ जाए, उसकी धारणा हो जाए, उसके लिए हमें हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे रोटी बनाने के लिए आपको आटा बनाना पड़ता है, रोटी बनानी पड़ती है, सेकनी पड़ती है, फिर वो खाने लायक बनती है। उसी प्रकार बाबा कहते हैं मनन, मंथन और चिंतन ये उसकी विधि है। कई लोग ऐसा कहते हैं अगर हमने रोज क्लास भी किया, मुरली सुनी, ब्राह्मण जीवन भी अपनाया, परंतु अगर ज्ञान का मनन मंथन नहीं किया तो हमारी स्थिति नहीं बन सकती है। जो बाबा कहते हैं, आज भी दादी गुलजार ने यही बताया कि बाबा यही देखना चाहते हैं कि सदा मुस्कुराते रहो। सिंपल सेंटेंस है, सदा मुस्कुराते रहो। कौन मुस्कुरा सकता है सदा? हमें अपने आप को देखना है, क्या हम सदा मुस्कुराए हुआ चेहरा हमारा रह सकता है? जरा भी चेहरा मुरझा गया तो इसका अर्थ क्या हो कि हमारे अंदर ज्ञान की कमी हो गई। तो इसलिए जिसको हम अप्लाइड नॉलेज कहते हैं, अप्लाइड कर अर्थात अप्लाई करना, खुद के जीवन के लिए ज्ञान को अपनाने लायक बनाना, प्रयोग करना, जिसको बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान का प्रयोग करो। बाबा जो कहते हैं वो घर जाके करने का, बाबा जिस दिन जो बात बताते हैं उस दिन वो बात को प्रयोग में लाने का, तब वो हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। तो बाबा अभी जो बाबा हमारे से चाहते हैं, जो बाबा के मूल्यों में, लास्ट कई मूल्यों में बाबा एक बात खास बताते हैं कि अभी जो सेवा होने वाली है वो कैसे होने वाली है? चेहरे और चलन के द्वारा, चेहरे और चलन के द्वारा। बल हम शब्दों में ढिंढोरा पीटते हैं कि हमें भगवान मिल चुका है, भगवान मिल चुका है, परंतु हमारा चेहरा कोई देखे और मुरझाया हुआ चेहरा हो तो कोई समझेगा कि इनको भगवान मिला है? समझेगा कोई? और ये वो हमें कह दिया कि आपको कोई तकलीफ हो तो हमें कहना, तो हमारी तो सारी तकलीफें कहां गई? दूर हो गई। कौन मिला है? हाँ, हमें कौन मिला है? बाबा अर्थात कौन? स्वयं भगवान, जिसको ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा, गॉड कह करके कितने गुरुओं ने, तपस्वियों ने, सब शास्त्रों में जिसका वर्णन है, कितना वर्णन है, कितना वर्णन है। और वो स्वयं आकर के हमें पढ़ा रहे हैं। इस बात का जिसको निश्चय है वो कभी भी मूंझ नहीं सकता, कभी उनको अपने जीवन के अंदर मुसीबत लग नहीं सकती, तकलीफ लग नहीं सकती, है ना। परिस्थिति तो कोई भी आवे, कलयुग है तो परिस्थिति कोई भी आ सकती है, परंतु अपनी मन की स्थिति, क्योंकि साथ में कौन है, सर्वशक्तिमान है। और ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर मुसीबत आएगी तो और ही अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्यों अच्छा है, अच्छा है मुसीबत आना, अच्छा है विघ्न आना, अच्छा है कि नहीं अच्छा है? अच्छा है, कमाल है। कौन समझते अच्छा है, हाथ ऊपर करे। वाह रे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाँ, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा के साथ का अनुभव होगा। जब हमें मुसीबत होती है तो बाबा का ध्यान हमारे तरफ ज्यादा होता है ना। जिसको मुसीबत नहीं है तो वो तो खुश है, वो तो उसको छोड़ देता है बाबा। पर जिसको मुसीबत है, अब बाबा के, आपने अगर बाबा शब्द कहा तो बाबा आपके साथ हाजिर हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि एक बार ऐसे हुआ कि एक भगवान का भक्त ही था, तो उसने सोचा कि वो तो हमेशा भगवान को याद करता था, भगवान उसके साथ साथ, ऐसा उसको अनुभव था। तो वो अपनी लाइफ को देखने लगा तो उसने नोट किया कि मेरे जीवन के अंदर जब जब मैं जहां भी गया हूं तो दो पांव और दूसरे दो पांव, दो कदम एक, दो कदम दूसरे, चार चार कदम दिखाई पड़ते साथ साथ चलते हुए। पर उसने ऑब्जर्व किया कि पर मैं जब मुसीबत में था तो दो ही कदम देखने में आया, तो उसको लगा कि भगवान ऐसा कैसा, वैसे तू मेरे साथ साथ होता है तो दो तेरे कदम दो मेरे दिखाई पड़ते हैं स्पष्ट, पर जब मुसीबत हुई तो दो ही कदम थे, ऐसा कैसा, आपने मुझे मुसीबत में ही छोड़ दिया। भगवान ने जवाब दिया कि तू देख ये कदम किसके हैं, वो दो कदम मेरे हैं तेरे नहीं हैं। जब तू मुसीबत में था तो मैंने तेरे को मेरे कंधे पर उठा लिया था, समझा। तो बाबा अब रूबरू हमारी जब आए हुए हैं तो हमें इतना मदद करने को तैयार है। बाबा कई बार मूल में यूज मी, है ना, मैं बैठा हूं, क्या कहते बाबा, बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूं। अब जब सर्वशक्तिमान खुद आके ये कहे कि मैं बैठा हूं तो हमें कोई भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता है नहीं है। पर तो भी कई लोगों को चिंता होती है, समझा, क्यों होती है, कारण एक होता है कि हम बाबा से भी जो बात हम चाहते हैं ना वो मांगते हैं। कई लोग भगवान से, बाबा से बातें करते हैं, बाबा मेरा ये कर देना, बाबा तुम इसको ज्ञान मिला देना, मेरा ये काम कर देना, सब कुछ कहते हैं। कभी होता है कभी नहीं होता है, क्योंकि हम अपने मन के अनुसार मांगते हैं, है ना। तो क्या कहना चाहिए, मुझे जो चाहिए वो ना देवे बाबा, क्या देवे, मेरे लिए जो कल्याणकारी है। बाबा को हमेशा ये कहो, बाबा आप वही हमेशा करना जो मेरे लिए कल्याणकारी है, मुझे जो चाहिए वो नहीं देना, मेरे लिए जो अच्छा है वो देना। फिर जो अच्छा है, मेहनत अच्छी है तो मेहनत दो, और कम मेहनत में ज्यादा फल देना है तो आपकी मर्जी, मेहनत ज्यादा करवाना है तो भी आपकी मर्जी है। अगर ये हम सोचेंगे तो कभी भी मन नाराज नहीं होगा। तो इसीलिए हमें अगर बाबा की बातों को जीवन में लाना है, बाबा जो उम्मीद हम बच्चों में रखते हैं कि तुम्हारे चेहरे और चलन के द्वारा सेवा होनी चाहिए, तो वो सेवा सबसे पहले कहाँ होगी? चैरिटी बिगिन्स एट होम। सबसे पहले वो सेवा हमारे घर में, हमारे परिवार में होंगी। सबसे पहला प्रभाव हमारे ज्ञानी जीवन का कहाँ पड़ेगा? हमारे परिवार के अंदर। ये नहीं कि हम बाहर गए तो बहुत अच्छे और घर में गए तो वही के वही, नहीं। एक बहन ने एक बार सुनाया कि हमारे पास एक फोन कॉल आया, एक प्रोग्राम रखा हुआ था, क्रोध से मुक्ति कैसे हो। तो एक फोन आया छोटे बच्चे का बहन जी के पास कि बहन कितने बजे प्रोग्राम है आपका। तो बहन को लगा ये तो बहुत छोटा बच्चा बोल रहा है, क्या है तेरे को आना है क्या प्रोग्राम में? बोला नहीं, मेरे मम्मी पापा को भेजना है। समझा? तो ऐसा ना हो, हम कहे कुछ भी और करे कुछ भी नहीं, सबसे पहले सुख का साम्राज्य, जो बाबा नया युग स्थापन करने आए हैं, सबसे पहले सुख का साम्राज्य हमारे मन में स्थापन करना है, पहली बात। और सेकंड, हमारे परिवार में। हाँ, आज भी कई परिवार ऐसे हैं, बाबा के बच्चे परिवार, जो पूरा परिवार ज्ञान में चलता है, वो लोग महसूस करते हैं, सेंटर में आके तो महसूस करते हैं कि यहाँ बड़ी शांति है, बहुत सुख है, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं। कभी तो कोई कहते हैं कि शांति इसको कहा जाता है, बहुत अच्छी फीलिंग बहुत अच्छी लेते हैं, तो कहते इसको शांति कहा जाता है क्या? ऐसा कभी लाइफ में शांति का अनुभव किया नहीं हुआ होता है। तो सेंटर पर तो ऐसा अनुभव होता है, पर कई परिवारों में भी आज ऐसा अनुभव हो रहा है, जो कोई भी आते हैं क्या महसूस करते हैं, यहाँ जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, एकदम शांति की महसूसता आती है। प्योरिटी तो है ही, पर साथ साथ शांति का अनुभव। तो पहला, हमारे मन में शांति हो, जिससे हमारा चेहरा प्रफुल्लित रहेगा, शांत रहेगा, चेहरे से सेवा होगी। और दूसरा, हमारे परिवार के अंदर वो हो, जिससे हमारी चलन से सेवा होगी। तो हमारा परिवार भी स्वर्ग की निशानी लोगों को बताएं कि अगर स्वर्ग देखना हो तो इसके घर में देखो। अगर परिवार में होगा तो ऑटोमेटिकली वो फिर धीरे धीरे समाज के अंदर आ सकता है, तभी हमारे चेहरे और चलन से सेवा हो सकती है। तो अभी खैर, बोल के तो सेवा करनी ही है, शब्द तो बताना ही है, पर जो सबसे इफेक्टिव, जिसको कहते हैं असरकारक सेवा, जिसको कहते हैं, वो है चेहरे और चलन के द्वारा सेवा। तो इसलिए बाबा हम सब बच्चों को रोज बनाते हैं, मूर्तियां गढ़ते हैं ना, तो रोज हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, हमारे से बात करते हैं। आपने देखा होगा मुरली के अंदर बाबा एक ही एक बात को इतनी बार भिन्न भिन्न रूप से समझाते हैं, पर कहने का सार एक ही है कि बच्चे तुम ऐसे पवित्र बन जाओ, ऐसे शक्तिशाली बन जाओ, तुम्हारा चेहरा ऐसा सदा मुस्कुराता हुआ रहे, जो हमारे वाइब्रेशन से ही वातावरण में पवित्रता फैले, शिष्टाचार फैले, हम जो सिद्धांत को बाबा ने हमें सिखाया है और मानते हैं, वो समाज के अंदर धीरे धीरे फैलता जाए, समझा, तो वो सेवा कही जाएगी। एक माता का अनुभव अंत में बताती हूँ। अभी उसने सुनाया क्लास में कि माता बहुत पढ़ी लिखी नहीं, एक डॉक्टर के पास अपनी सारवार कराने गई, तो माता ही होती है, तो डॉक्टर को भी ज्ञान सुनाने लगे, तो डॉक्टर तुम ज्ञान छोड़ो, ऐसे बातें मत करो मेरे से, क्या होता है वो बताओ, अपनी कंप्लेन बताओ, ज्ञान छोड़ो। बोला नहीं, हम जाते हैं ब्रह्मा कुमारी इसके पास, ऐसा ज्ञान सुनाते। बोला नाम ही मत लो उसका, ओके। तो सुन लिया बिचारी ने, फिर गई, फिर एक वीक के बाद फिर दोबारा, तो फिर डॉक्टर को कहती है कि देखो डॉक्टर, तुम मेरे शरीर की दवाई करते हो, मेरे मन की नहीं करते हो, तुमको पता है कि मेरा मन खुश है। बोले मेरा तन खुश नहीं है, मन तो बहुत खुश है। तो डॉक्टर को थोड़ा सुनने लायक लगा कि हाँ बात तो ठीक है, तुम्हारा चेहरा तो अच्छा लगता है, शरीर अच्छा नहीं है पर तुम्हारा चेहरा तो अच्छा लगता है। अच्छा, फिर और 10 दिन के बाद गई दोबारा बताने के लिए, तो कहते कुछ है तो सही, है ना, वो मान गया डॉक्टर कि कुछ है तो सही, सच में ही तुम बहुत खुश मिजाज लगती, कैसे रहती हो, तेरे को इतना रोग हुआ है, इतनी तकलीफ है। बोला वो शरीर को है ना, तुम शरीर के डॉक्टर हो, आत्मा के डॉक्टर तो वही परमपिता परमात्मा है। मान गया कहता है, बिल्कुल पढ़ी लिखी माता नहीं है, वो पढ़ा लिखा डॉक्टर मान गया, कहता मान गया कि तुम्हारा डॉक्टर परमात्मा है। आप सोचिए तो कैसे सेवा हुई, चेहरे और चलन से। तो हम सभी को इतना दृढ़ निश्चय होगा तो बाबा की मदद मिलती है और एक एक व्यक्ति समाज के अंदर बहुत अच्छा संदेश देने वाला सेवाधारी बन सकता है। और सेवा ही भाग्य है, हम कितने लकी है ना। तो हम सभी को ऐसा ही अपना भाग्य बनाना है। ओम शांति।
इतराते हैं गाते होके मत वाले
the name.